हम सबके बीच में उपस्थित है राजयोगिनी तपस्वी मूरत दिव्य गुणों की खान ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर सविता देवी। हम सब उनका एक हाथ की ताली से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। डॉक्टर सविता दीदी बाल्यकाल से ही प्यारे बाबा की चुनिंदा रत्न है। आपको बचपन से ही ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन करना रुचिकर लगा। आप पिछले 35 वर्षों से ईश्वरीय सेवा में अपना समर्पित जीवन व्यतीत कर रही हैं। ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू में आपने कुछ समय फिजिशियन के रूप में अपनी सेवाएं दी। उसके पश्चात आदरणीय डॉक्टर दादी प्रकाश मणि जी की व्यक्तिगत चिकित्सक के रूप में आपने, दादी जी जब तक रहे तब तक आपने लंबे समय तक उनकी सेवाएं की और आपने के अंदर दादी जी की भांति सहजता, प्रसन्नता, दिव्यता और सबको अपना बनाने की कला, जैसे दादी जी से आपने सहज ही अपने अंदर भर ली। आप मृदुभाषी और विषय की गहरी पैठ रखने वाली हैं। आपकी वाणी मधुर ओजस्वी है। आप राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन की महिला प्रभाग की मधुबन कोऑर्डिनेटर हैं। ऐसी प्रखर ओजस्वी तपस्वी मूरत डॉक्टर सविता दीदी से हम निवेदन करेंगे कि हम सबको एक बाप से सर्व संबंध कैसे निभाएं और उनको निभाते हुए हम अपने जीवन में अलौकिकता को कैसे भरें, इस विषय पर प्रकाश डालें आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर सविता दीदी।
ओम शांति, ओम शांति। पिछले 3 दिनों से आप सभी यहाँ पांडव भवन में निवास कर रहे हैं, तो अभी तक महसूस कर रहे होंगे कि आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो गई है और एक पाप दूसरा ना कोई इस स्थिति का भी अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आकर के हमें योग लगाना नहीं पड़ता है, लेकिन योग जैसे सहज ही लगा हुआ होता है। जब हम योग कहते हैं तो योग का अर्थ ही है संबंध। और जब हम राजयोग कहते हैं तो राजयोग का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ संबंध, और सर्वश्रेष्ठ के साथ संबंध और सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति कराने वाला संबंध। तो सर्वश्रेष्ठ के साथ संबंध, ये कितना खुशी और नशे की बात है कि स्वयं भगवान के साथ हम डायरेक्ट समीप संबंध में हैं। दुनिया में भी कोई किसी ऊंचे व्यक्ति के साथ संबंध में होता है, मानो कोई प्राइम मिनिस्टर का बेटा है या राष्ट्रपति का संबंधी है, तो उसको कितना नशा होता है कि हम किसके संबंध में हैं। और जितनी प्राप्तियां, जितना सम्मान उसको होता है, वैसा ही सम्मान उसके परिवार को भी होता है। और दूसरी बात कि ये हमें सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति कराने वाला है। ऐसे तो हम संसार में भी संबंधों में रहते हैं और संसार में भी हमें प्राप्तियां हैं संबंधों में, तभी समाज में रहते हैं, हमें स्नेह मिलता है, सहयोग मिलता है, हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। बाबा से भी जब हम संबंध में आते हैं तो हमें स्नेह मिलता है, ईश्वरीय स्नेह के सभी अनुभवी हैं। मैं समझती हूँ कि जब हम पहली बार बाबा के पास आते हैं तो दो चीजों का अनुभव करते हैं। जब हम 7 दिन का कोर्स करते हैं और बाबा के बच्चे, बाबा ने मुझे अपना बनाया, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, वो निश्चय हमें होता है, तब वो स्नेह और शांति का अनुभव ही हमें बाबा का बनाता है। और वो स्नेह की जो शक्ति है वही जीवन में परिवर्तन लाती है। जो रूहानी निस्वार्थ स्नेह, निर्मल स्नेह हमें बाबा से अनुभव होता है, वो बाद में हमें पता चलता है कि मनुष्य से देवता बनना है हमको, पुरुषार्थ करना है, ये सब धारणाएं हमको करनी है, लेकिन सबसे पहला अनुभव क्या होता है? और वो स्नेह में ही इतनी ताकत होती है कि जैसे स्नेह में दुनिया में भी लोग कुर्बान हो जाते हैं, तो भगवान का वो स्नेह अनुभव करते हुए हमें कोई भी बात मुश्किल लगती है फिर? वो स्नेह की शक्ति हम अनुभव करते हैं, तो बाबा से हमें वो स्नेह मिलता है। लेकिन जो संबंधों में, लौकिक संबंधों में होने वाली प्राप्ति है, वो परिवर्तनशील है। सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति कैसे है? क्योंकि लौकिक संबंधी आज हमें सुख देते हैं तो कल हमें दुख भी देते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति, परिस्थिति, मनस्थिति बदल जाती है। आज अगर वो हमारा सम्मान करते हैं तो कल हमारा अपमान भी कर सकते हैं, आज वो हमें प्रेम करते हैं तो कल हमसे नफरत भी कर सकते हैं। हम सब अनुभवी हैं क्योंकि हर दिन ये अनुभवों से हम गुजरते हैं। हम खुद भी ऐसा व्यवहार करते हैं, कई बार हमारी मनस्थिति भी बदल जाती है। हम भी जिस व्यक्ति को सुख दे रहे होते हैं, प्रेम कर रहे होते हैं, कई बार हम उनको फिर दुख भी देने लग जाते हैं जब उनकी कोई कमियां हमें नजर आने लग जाती हैं। लेकिन शिव बाबा सदा एक जैसा है, बाबा कभी परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए वो सदा ही प्यार का सागर है, वो सदा ही सुख का दाता है, वो सदा ही आनंद का सागर है। तो इसीलिए कहा कि उस संबंध से जो होने वाली प्राप्ति, वो अविनाशी है, वो शाश्वत है। बाकी सांसारिक संबंध परिवर्तनशील है, तो वर्तमान समय जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ संबंध है और सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति कराने वाला संबंध है, वो डायरेक्ट बाबा से जो हमारा संबंध हुआ है वो संबंध है। फिर बाबा हमें सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, अनुभव है हमें संबंधों में समय पर सहयोग मिलता है, तो बाबा भी हमें मदद करते नहीं करते हैं, क्या कहेंगे, करते हैं ना। तो हर एक के अपने अपने अनुभव हैं कि कैसे जब मुश्किलें आई हमारे जीवन में या हमें जब भी बाबा की जरूरत हुई तो हमने हिम्मत रखी और हजार कदम, क्या कई बार पदम गुना भी हमें उसकी मदद, उस हिम्मत की मदद हमें बाबा से अनुभव हुई। तो मैं अपने जीवन के, मेरे बहुत सारे अनुभव हैं, लेकिन मैं एक दो अनुभव शेयर करना चाहूंगी आपसे। अभी पिछले साल ही मैं राउरकेला गई थी, वहाँ सेवा का प्रोग्राम था, और जब हम वापस लौट रहे थे तो रांची, जो झारखंड की राजधानी है, वहां से प्लेन था। तो वहां हमने जो भी बोर्डिंग पास वगैरह लेते हैं वो सब लेकर के और बैठे थे गेट पर, लेकिन देखा कि फ्लाइट का टाइम हो रहा है लेकिन कोई बोर्डिंग नहीं हो रही है और फ्लाइट भी नहीं लगी हुई है। अब वो बोर्डिंग गेट चेंज हो गया लेकिन हमें पता नहीं चला, अनाउंसमेंट हुआ या नहीं हुआ वो सुना नहीं हमने, या हुआ नहीं मालूम नहीं, क्योंकि कई एयरपोर्ट साइलेंट होते हैं। तो हम वहीं बैठे रहे और मैं टाइम देख रही हूं कि टाइम हो गया है, कुछ नहीं, यहाँ कोई प्लेन नहीं लगा, कोई बोर्डिंग नहीं हो रही है। फिर मैंने मन ही मन सोचा कि शायद प्लेन लेट होगा इसीलिए। इतने में ही कॉल आई, जो फ्लाइट वाले होते हैं उनके पास हमारा नंबर होता है जब टिकट बुक कराते हैं, तो मेरे पास कॉल आई कि मैडम आप कहीं एयरपोर्ट पर हैं तो तुरंत आ जाइए, बोर्डिंग क्लोज हो रही है। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा यहाँ गेट पर तो कोई नहीं है, बोर्डिंग क्लोज कैसे हो रही है? तो उन्होंने कहा कि गेट चेंज हो गया है, आपको मालूम नहीं? मैंने कहा नहीं, हम तो एक घंटे से यहाँ बैठे हैं। तो उन्होंने बताया कि आप तुरंत इस नंबर गेट पर आ जाइए, दो मिनट में वो बोर्डिंग गेट क्लोज हो जाएगा। तो हमने तुरंत अपना बैग उठाया और चले, लेकिन हुआ ये कि एक दूसरा भी बैग था जिसमें मैंने बोर्डिंग पास डाल दिया था और वो जल्दी जल्दी में वहीं छोड़ दिया। और मैं वहां पहुंची तो देखा तो बोर्डिंग पास ही नहीं है, बोर्डिंग पास के बिना तो एंट्री नहीं होती है प्लेन में। तो मैंने उनको बोला, वो वहां छूट गया, मैं एक मिनट में लेके आती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, इतना टाइम नहीं है, पहले ही आप बहुत लेट हो चुके हैं, आपके लिए हम वेट कर रहे थे, तो आप सोच लीजिए फ्लाइट छूट गई आपकी, आप नेक्स्ट कोई प्रबंध करिए। ऐसे करके उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मतलब उनका गेट क्लोज हो गया, फ्लाइट चल दी वहां से। अब मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा हमारी तो कोई गलती नहीं, हम तो बैठे हैं यहाँ एक घंटे से और हमें मालूम नहीं, अब आप जानो। और वो फ्लाइट ऐसे थी, रांची से कलकत्ता, कलकत्ता से अहमदाबाद, और वहां कलकत्ता में 3 घंटे का उसका गैप था। तो मैंने बाबा को बोला कि अब कलकत्ता कैसे पहुंचाना है वो आप जानो, ये तो चली गई। ऐसे बोल के फिर मैं निसंकल्प हो गई। फिर मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया मन में कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ड्रामा, जैसे हमें ड्रामा का ज्ञान मालूम है कि ठीक है ड्रामा में था, हुआ और बाबा आप जानो, ऐसे करके मैं वहां से जाने लगी। तो वो बहन जो थी, जो एंट्री कराती है, उसने मुझे रोका, उसने कहा आप रुको, आप थोड़ा रुको यहाँ पर। तो मैंने कहा कि मैं रुकती तो हूँ लेकिन क्या आपको मालूम है कि कोई इसके आगे आधे घंटे में, पौने घंटे में कोई फ्लाइट जाने वाली हो ताकि मैं टाइम पर कलकत्ता पहुंच जाऊं, तो मैं नेक्स्ट मेरी जो कनेक्टिंग फ्लाइट है वो मुझे मिल जाएगी। तो उसने कहा कि अभी अभी आप रुको, हम बताते हैं आपको थोड़ी देर। तो वो मुझे अपने ऑफिस में लेके गई और उसने मुझे वहां कहा आप 15-20 मिनट बैठ जाओ यहाँ, आपको कहीं नहीं जाना है, 15-20 मिनट के बाद हम आपको बताएंगे। मैंने कहा बोल रही है तो बैठ जाते हैं, बैठ गई वहां पर। फिर वो उसने क्या किया इस बीच में वो तो वही जाने। फिर वो आकर के मेरे से बोलती आप मेरे साथ आओ, अभी मुझे कुछ नहीं बता रही है कि क्या कर रही है वो, कहती मेरे साथ आओ। मैं गई उसके साथ साथ, उसने मेरे को फिर से सिक्योरिटी चेक कराया। फिर मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आप मुझे दूसरी फ्लाइट में भेज रहे हो? तो उसने कहा कि आप जो मैं कह रही हूँ वो करते जाओ, फिर मैं बताती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने वो वापस सिक्योरिटी चेक करा लिया। फिर मैं वहां गई और उसने मुझे वो जो बोर्डिंग गेट होते हैं वो एक गेट सीधा खुलवाया और लेके गई। तो मैंने देखा कि जो फ्लाइट रनवे पे चली गई थी, माना जो उड़ने वाली फ्लाइट थी, वही फ्लाइट रिवर्ट होके वापस आ गई थी और मैं फिर उस फ्लाइट में बैठी। तो देखो, मैंने सिर्फ बाबा को बोला कि बाबा आपको कैसे पहुंचाना है, नहीं तो कभी भी जो रनवे पे फ्लाइट चली जाए वो कभी भी वापस पलट कर नहीं आती है, लेकिन वो कैसे बाबा ने उसको टच किया, कैसे काम कराया वो बाबा ही जाने, लेकिन वो फ्लाइट पलट कर मेरे लिए आई। और वो जैसे होता है ना VVIP कोई रह गया हो तो वो चढ़ते, वो मेरे को उस समय फीलिंग आ रही थी कि भगवान ने हमको ऐसा VVIP बना दिया यहाँ पर। बैग तो उठा लिया, इतना टाइम था ना बीच में, वो तो उठा के ही फिर मैं गई उसके साथ। मैंने कहा मेरा बैग रह गया वहां पर। फिर एक एक्सपीरियंस था मेरा विदेश का, 10 साल पहले मैं गई थी अमेरिका में, और वहां न्यूयॉर्क में मैं थी। न्यूयॉर्क में अपने 2-3 सेंटर हैं, और वहां एक मैनहट्टन जगह है जहां पर वो स्काई स्क्रैपर्स बोलते हैं ना, बहुत बड़े बड़े टॉल टावर्स हैं, वो वाला स्थान वहां अपना एक सेंटर है। तो मैं 2 दिन के लिए वहां रुकी हुई थी, और वो जो सेंटर की बहन थी उसने उस दिन मेरा न्यूयॉर्क देखने का प्रोग्राम बनाया था। तो वहां पर एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है जो बहुत प्रसिद्ध है अमेरिका में, अगर आप में से कई लोग जानते होंगे। और एक वो स्थान जहां आतंकवादियों ने जो ट्विन बिल्डिंग थी, ट्विन टावर्स थे, उसको गिराया था। तो उस दिन वो बाई चांस 11 सितंबर ही था जब उन्होंने गिराया था, तो वो श्रद्धांजलि दिवस था उनका। तो हम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी घूम के, और उसने मुझे कहा कि आप ये स्थान देखोगे जहां ये ट्विन टावर थे, अब तो कुछ भी नहीं था वहां, सिर्फ प्लेन ग्राउंड बना रखा था उन्होंने, और सारे लोग जिनके संबंधियों ने शरीर छोड़ा था उनको वो फूल गुलदस्ते वगैरह रख रहे थे वहां पर, काफी भीड़ थी। तो मेरे पास कैमरा था तो मैं वो फोटो लेने लग गई उसका। अब जब मैं उसको फोटो लेने लगी तो जो बहन मेरे साथ थी जो मुझे घुमा रही थी, वो बहन उस भीड़ में कहां चली गई पता नहीं। अब मैंने कैमरे से अपना ध्यान हटाया तो देखा बहन ही नहीं मिल रही है, इधर देखा उधर देखा, इधर उधर बहुत पूरी भीड़ में चक्कर लगा के देख लिया, वो कहीं है ही नहीं। और मेरे पास ना एड्रेस और ना ही मेरे पास फोन नंबर, क्योंकि वो मेरे साथ थी तो मैंने सोचा भी नहीं कि मुझे कोई एड्रेस फोन नंबर की जरूरत है। और सेंटर पर शाम को 7 बजे पब्लिक प्रोग्राम था, ये 5 बजे की बात थी, शाम को 5 बजे की बात, और 7 बजे सेंटर पर पब्लिक प्रोग्राम। और मैं तो थोड़ा सा मुझे विचार चला, मैंने कही कहां चली गई। फिर मेरे को आधा घंटा हो गया ढूंढते ढूंढते, वो बहन मिली नहीं मेरे को। मैंने कहा वो तो इसका मतलब चली गई मेरे को छोड़ के, कैसे चली गई, मेरे को मतलब आश्चर्य होने लगा। फिर मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा ये न्यूयॉर्क ये मेरे लिए नई जगह है, और ऐसा स्थान मैं कहां जाऊंगी, सेंटर मुझे पता नहीं, आप जानो कैसे सेंटर पहुंचाना है। यहां भी मैंने बाबा को बोला कि 7 बजे पब्लिक प्रोग्राम है, अब मैं कैसे पहुंचूंगी मुझे नहीं मालूम, ना मुझे फोन नंबर मालूम ना मुझे एड्रेस मालूम, बस जगह का नाम मालूम है कि मैनहट्टन है। तो अब देखो बाबा कैसे हमें टच करता है। जैसे ही मैंने बाबा को बोलना शुरू किया, मैंने अपना पर्स खोला तो देखा जो टिकट थी बस की वो मेरे पास ही थी। तो मेरे को थोड़ी शांति हुई कि बस की टिकट तो मेरे पास है, चलो बस तो मैं पकड़ लूंगी। फिर मैंने किसी पुलिस वाले को पूछा कि ये बस कहाँ मिलेगी, तो उसने मुझे स्टॉप बता दिया कि स्टॉप पे चले जाओ। मैं वहां खड़ी हो गई, थोड़ी देर में बस आ गई, मैं चढ़ गई उसमें। फिर वो बस वाले ने मेरे को पूछा कि सिस्टर वेयर डू यू वांट टू गो, कहाँ जाना है आपको। तो मैंने कहा मैनहट्टन, तो हंसने लगा। उसने कहा सिस्टर दिस होल एरिया इज मैनहट्टन, टेल मी वेयर डू यू वांट टू गो। मैंने कहा मुझे तो मालूम नहीं कहाँ जाना है, तो मैं चुप एकदम। फिर उसको सोचा, उसने सोचा ये कंफ्यूज है, तो उसने मुझे छोड़ दिया, वो दूसरे पैसेंजर के पास चला गया। फिर मेरे को ध्यान आया कि मेरे पास फोन है, और मेरा जो लौकिक भाई था वो उस समय अमेरिका में था, कोई प्रोजेक्ट के लिए उसकी वहां पोस्टिंग हुई थी, तो उसने मुझे फोन दिया था कि कभी कोई इमरजेंसी हो तो आप कॉल कर सकते हो। तो मैंने वो फोन उसी का ही नंबर था सिर्फ मेरे पास, तो मैंने उसको कॉल किया और मैंने उसको बोला कि मैं है ना यहाँ न्यूयॉर्क में गुम हो गई हूँ। और आप देखो, अब एक ही बात मुझे याद आ रही है कि इंटरनेट पे आप जाओ और इंटरनेट पे आप न्यूयॉर्क सेंटर का एड्रेस देखो, और उसमें जो फोन नंबर है वो फोन नंबर पे आप फोन करो और उनको बताओ कि मैं जो है वो बस में बैठी हूँ, मुझे कहाँ उतरना है और वो मुझे फोन करे या मेरा फोन नंबर उनको दो, मतलब मैंने उसको सारा प्रोसेस समझाया कि कैसे इतनी देर में आपको ये सारा काम मेरे लिए करना है। वो मैं थी न्यूयॉर्क में और वो था कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया जहां पर ये आईटी वाले लोग होते हैं। तो उसने किया तुरंत, उसको भी लगा कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। तो उसको न्यूयॉर्क का तो नहीं मिला, लंदन का मिल गया, क्योंकि लंदन विदेश का हेडक्वार्टर है। तो उसने लंदन ही फोन कर दिया लंदन वालों को पता चल गया कि मैं गुम हो गई पर उन्होंने न्यूयॉर्क का नंबर दे दिया उसको, और नंबर दिया, फिर उसने सारा ये सब किया। और जो बहन थी वहां सेंटर की, वो सेंटर की बहन को उसने मेरा नंबर दिया और बोला उसको आप कॉल करके बता दो कहां उतरना है। फिर उसका फोन आया और तब तक जो बस थी वो उस स्टॉप तक पहुंच चुकी थी जहां मुझे उतरना था। तो उसने मुझे बोला आप यहीं उतर जाओ अभी और वहीं के वहीं खड़े रहना, मैं भाई को भेजती हूं और वो आपको वहां से ले लेगा, आपको वहां से कहीं हिलना नहीं है, उसी स्टॉप पर खड़े रहो आप। फिर मैं वहां खड़ी हो गई और 10 मिनट में वो भाई पहुंच गए मुझे लेने के लिए। और मैं 7 बजे से, मेरा 7 बजे प्रोग्राम था और 7:45 बजे मैं सेंटर पर थी, मतलब बाबा ने मुझे टाइम पर पहुंचा दिया और घुमा भी दिया तो मतलब मैं फ्रेश होकर के, और मैंने 5-10 मिनट थोड़ा लेट हुआ और वो प्रोग्राम भी हमने किया। तो मैं एक बात कह रही हूँ कि जैसे ही हम बाबा के ऊपर छोड़ते हैं, बाबा कैसे भले ही वो किसी को निमित्त बनाते हैं, क्योंकि भगवान तो निराकार है, तो साकार में वो कैसे कार्य करेंगे, तो किसी ना किसी को निमित्त बना देते हैं। और वो आत्मा निमित्त बन करके बाबा की तरफ से समझो हमें वो सहयोग मिलता है और इस तरह से हमारा वो काम हो जाता है। हाँ, वो सेंटर पहुंच गई थी और वो भी बेचारी बड़ी चिंता में थी क्योंकि उसको मैं नहीं मिली, मैं उसको, समझ गए ना, मैंने उसको ढूंढा, उसने मुझे ढूंढा, हम दोनों ही एक दूसरे को नहीं मिले। आखिर वो थक के, क्योंकि उसे तो रास्ता मालूम था, तो आखिर थक के वो तो सेंटर चली गई, पहुंच गई वहां पर, लेकिन उसके पास मेरा नंबर नहीं था और मेरे पास सेंटर का कोई कांटेक्ट नहीं था, तो कांटेक्ट करने की कोई मार्जिन नहीं थी। वो तो लौकिक, देखो पहले से बाबा प्रबंध करके देता है हमको, तो वो लौकिक भाई ने मुझे जो फोन दिया था उसके कारण ये सब आसान हो गया और फिर बाद में हम टाइम पर पहुंच गए। तो ये तो मैं दो घटनाएं बता रही हूं, ऐसे कितने अनुभव हैं हमारे जीवन के, जब जैसे ही कोई मुश्किल होती है बाबा हमारी मदद के लिए जैसे हाजिर होते हैं। तो हमारे सर्व संबंध हैं बाबा के साथ, माता पिता शिक्षक गुरु, आगे साथी साजन भाई, हाँ सखा बच्चा और सर्जन धर्मराज, ऑल इन वन है बाबा, सर्व संबंध एक में समाये हुए हैं। दुनिया में तो हर संबंध अलग अलग है, माता अलग है तो पिता अलग है, टीचर अलग है, गुरु अलग है, भाई अलग है। तो कहते हैं ना, दिल के टुकड़े टुकड़े हुए, टुकड़े हजार हुए, ऐसे कोई गीत है। हाँ, तो अभी तो दुनिया में जो हमारे संबंध हैं वो ये है कि थोड़ी दिल किसमें है, थोड़ी दिल किसमें है, थोड़ी दिल किसमें है, लेकिन यहाँ तो एक बाबा के साथ सर्व संबंध, माना मन सहज एकाग्र हो जाता है एक के अंदर ही। तो वो माता पिता के रूप में हमारी पालना कर रहे हैं, भक्ति में कहते हैं भगवान पालनहार है, लेकिन सचमुच कैसे भगवान हमारी पालना करते हैं, पालना करके हमें योग्य बनाते हैं। आज हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, इतने ऊंचे संस्कार, इतने श्रेष्ठ संस्कार बाबा हमें दे रहे हैं, तो वो पालना हमें मिल रही है। बाबा के सर्व खजानों के हम मालिक हैं, जैसे बच्चा वारिस होता है माता पिता का, तो बाबा के हम वारिस हैं, बालक सो मालिक हैं। आज के जमाने में भी देखने में आता है कि जो बच्चे हैं वो माँ बाप के भी मालिक हैं, माता पिता को बच्चों के सर्वेंट बन के चलना पड़ता है। तो बाबा आकर के हमें कहते हैं आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, बाबा भी हम बच्चों के लिए जैसे सर्वेंट बनकर के ही आते हैं और बिल्कुल एक सेवाधारी की तरह हम बच्चों की सेवा करते हैं, सेवा में हाजिर हैं। तो ये पालना का अनुभव हम अमृत वेले के समय विशेष कर सकते हैं और बाबा से सर्व प्राप्तियों का अनुभव भी हम कर सकते हैं। माता पिता के संबंध में एक बात कि उनके आज्ञाकारी हम जितने होते हैं उतनी माँ बाप की दुआएं मिलती हैं। तो बाबा के श्रीमत को अमृत वेले से रात तक हम जितना पालन करते हैं उतना ही सहज बाबा की पालना और दुआओं का अनुभव हम करते हैं। और जैसे सुख दुख में माता पिता साथ खड़े होते हैं बच्चों के, तो बाबा भी हमारे साथ होते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कितने विघ्न आते हैं ब्राह्मण बनने के बाद, लेकिन सारे विघ्नों को हम कैसे पार करते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, जिसको कहते हैं मक्खन से बाल, जो लगन है वो सारे विघ्नों को समाप्त कर देती है। एक छोटी सी कहानी आती है इसके ऊपर कि एक भगत था, वही भगवान से ही सब संबंध रखता था वो। तो एक दिन उसने सपना देखा, तो रात को सपने में उसने देखा कि वो समुद्र के किनारे चल रहा है। फिर उसने ध्यान से देखा कि समुद्र के किनारे जो रेत है उस पर पैरों के निशान है। तो एक जगह जो है वो चार पैरों के निशान है और थोड़ा दूर जाने पर सिर्फ दो पैरों के निशान है। फिर उसने और ध्यान दिया तो उसने देखा जहां चार पैरों के निशान है वो उसके मुश्किल भरे दिन है, कष्ट भरे दिन है, और वहां वो उसके खुशी भरे दिन है, और उस समय भगवान उसके साथ चल रहे हैं, साथी बनकर चल रहे हैं। लेकिन जहां दो पैरों के निशान है वो उसके कष्ट भरे दिन है और वहां सिर्फ दो ही पैरों के निशान है। तो उसे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि भगवान मुझे छोड़कर कहां चले गए इन दिनों में, वो तो मेरे साथ ही हैं। तो उसने भगवान से शिकायत की कि भगवान मेरे दुख भरे दिनों में तो मेरे सुख भरे दिनों में तो आप मेरे साथ हो, लेकिन मेरे दुख भरे दिनों में सिर्फ दो पैरों के निशान है, आप कहां हो? तो भगवान ने उसे जवाब दिया कि तुम्हारे सुख भरे दिनों में मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे दुख भरे दिनों में मैं तुम्हें चलने की भी तकलीफ नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें गोदी में उठा लिया। तो वो जो दो पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं वो किसके निशान है? तुम्हारे नहीं, मेरे निशान है। तो ये भगवान हमें हमारे दुख भरे दिन जब होते हैं तो ऐसे बाबा हमें उड़ती कला का अनुभव कराते हैं। माना हम ऊंचे उड़ जाते हैं तो जो परिस्थितियां हैं वो हमें परिस्थितियां लगती ही नहीं है, वो कहां से सहन शक्ति हमारे अंदर आती है, कितना धैर्य हमारे अंदर आ जाता है, या जो भी कहो सामना करने की शक्ति आ जाती है, वो बाबा हमें देते हैं। और वो फिर हम कैसे पार हो जाते हैं, आप सब बैठे हैं और सभी ने उन विघ्नों को पार किया है जो ब्राह्मण बनने के बाद आते हैं, वो विघ्न विघ्न लगे आपको, क्योंकि बाबा ने मात पिता बन करके हमें सहज उन विघ्नों से पार कराया। ऐसे ही वो हमारे शिक्षक हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, रोज बाबा हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, स्वयं परम धाम से परमात्मा भगवान खुद हमें पढ़ाने के लिए आते हैं, इतना ऊंच परम शिक्षक वो हमारा है। दुनिया में भी कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में, नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी में और बहुत नामी ग्रामी प्रोफेसर से पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत नशा होता है कि हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या हम ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं या और भी जो प्रसिद्ध कॉलेजेस हैं जैसे IIT होते हैं, IIM होते हैं, इन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और पढ़ाने वाले देखो हमारे टीचर कैसे हैं। तो हम खुद भगवान की गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और पढ़ाने वाला शिक्षक भी स्वयं परमात्मा है, और तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान, हमारे जीवन के सब सत्यों का ज्ञान बाबा हमें देते हैं। लेकिन शिक्षक के संबंध से स्टूडेंट्स को कैसा होना चाहिए, कैसे स्टूडेंट्स टीचर को पसंद होते हैं, जो पढ़ाई में रेगुलर और पंचुअल हैं। तो हम अपनी पढ़ाई में कितने रेगुलर और पंचुअल हैं? हर दिन मुरली सुनते हैं, सभी सुनते हैं जो यहाँ बैठे हैं, मुरली मिस तो नहीं करते हैं, या कोई गुरुवार शनि गुरुवार रविवार मुरली सुनने वाले हैं, हफ्ते में दो दिन जाते हैं, बाकी दिन तो बिजी रहते हैं, बच्चों को संभालना होता है, सब घर में काम पर जाने वाले होते हैं, टाइम नहीं मिलता है, क्या कहेंगे। तो हफ्ते में दो दिन सेंटर जाने वाले कौन भाई बहने हैं, हाथ उठाएंगे, थोड़े थोड़े हैं, जो रेगुलर मुरली सुनते हैं सेंटर पे जाके, रोज पढ़ते हैं वो नहीं, वो तो आजकल सब साधन है तो घर में भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, हाथ नीचे। तो अगर हम घर में मुरली पढ़ते हैं, मानो टेलीविजन पे देख लेते हैं, पीस ऑफ माइंड पर देख लेते हैं, या हम मोबाइल पे सुन लेते हैं, तो वो हमें शक्ति नहीं मिलती या वो हमारा स्वरूप नहीं बनता जब हम सेंटर पर जाकर के मुरली सुनते हैं। क्योंकि सेंटर पर एक तो वातावरण होता है और दूसरा एकाग्रता बनती है, क्योंकि आप सिर्फ मुरली ही सुन रहे हैं उस समय, और कोई आपको कारोबार नहीं है, तो फिर वो हमारे अंदर समाता है जो ज्ञान है, अगर हम एकाग्रता से सुन रहे हैं। लेकिन आपने घर में मुरली सुनी, टेलीविजन पे सुन रहे हैं, उसी समय कोई फोन आ गया तो फोन भी सुन लेंगे, मुरली के साथ साथ फोन भी सुन लेंगे, फिर किसी ने कोई बात आके की आपसे, उसको कोई काम है, कुछ पूछना है, उसका जवाब भी आप दे देंगे, फिर रसोई में आपने कुछ रखा है, आपको याद आ गया, फिर उठ करके वो भी जाकर, कितनी मुरली सुनी तो सिर्फ तसल्ली के लिए सुनी कि हाँ मैंने मुरली मिस नहीं की, लेकिन एकाग्रता नहीं, इसलिए अंदर कुछ भी नहीं गया। और फिर याद नहीं होगा तो धारणा भी नहीं होगी, सारे दिन हम स्मृति स्वरूप भी नहीं बन सकते। वो हमें जो बैटरी चार्ज हमें फील होती है मुरली सुनने के बाद, ऐसी हमें फीलिंग नहीं आई। तो इसीलिए सबसे नंबर वन स्टूडेंट माना रोज सेंटर पर जाकर के, और खासकर मॉर्निंग क्लास में। चलो मजबूरी है, नहीं जा सकते मॉर्निंग क्लास में, तो भले ही शाम की क्लास में जाकर के भी हम सुनते हैं, लेकिन मुरली में रेगुलर पंचुअल होना है। हम दादियों को देखते थे, अभी अगस्त मास है, दादी प्रकाशमणि जी का मास है, दादी चार बार मुरली पढ़ती थी, और क्योंकि हम तो दादी के अंग संग रहे तो हमने दादी को देखा ये, और मुझे तो बहुत आश्चर्य होता था कि दादी ओम मंडली के टाइम से है यज्ञ में, कितनी बार दादी ने वो मुरली सुनी, क्योंकि रिवाइज होती है मुरली हर 5 साल में, लेकिन फिर भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार मुरली पढ़ते हैं। और रात को सोने से पहले तो मस्ट, कुछ भी हो जाए, कितनी देर हो गई, कई बार बाबा के प्रोग्राम रात को 12 बजे पूरे होते थे, उससे भी लेट हो जाता था, दादी जब बाबा ने मुरली चलाई पूरी पड़ेगी, चार चार पेज की इतनी लंबी मुरली होती थी उस समय जब बाबा चलाते थे, तो हम कहते थे दादी एक बज रहा है, आप तो सुबह पढ़ते ही है ना मुरली, अभी तो सो सकते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, तो हमें भी नींद आ रही होती थी, तो हम थोड़ा सा कहते थे दादी को, तो दादी कहती थी तुमको नींद आ रही है ना, तो तुम सो जाओ जाके, मैं तो मुरली पढ़ के सोऊंगी, मुझे मुरली पढ़े बिना नींद नहीं आएगी। और फिर हम देखते थे मुरली पढ़ के 1 मिनट में सो जाती थी दादी को सोने में टाइम नहीं लगता था, लेकिन मुरली जरूर पढ़ेंगे। और वो हमारी दादी के साथ जैसे गीता पाठशाला होती थी, जो भी हम बहने होती थी कॉटेज में उस समय, तो दादी मुरली पढ़ते थे, तो फिर कुछ ना कुछ हमें उसमें से सुनाते भी थे, अपने कुछ अनुभव की बातें भी दादी को याद आ जाती थी मुरली पढ़ते हुए, तो वो भी सुनाते थे। फिर दादी अमृत वेले के बाद मुरली पढ़ेगी, फिर शाम को नींद करके रेस्ट करके उठते थे तभी भी मुरली पढ़ते थे, और मुरली क्लास में सुनाते थे, 4 बार हो गया। और दादी जानकी सुनाते हैं अपना अनुभव कि वो जब ज्ञान में आए, ओम मंडली जब शुरू हुई, तो वो 1 साल लेट आए, तो उस समय भी कहते थे टाइम बहुत कम है, अब ये तो पता नहीं था कि कब विनाश हो जाएगा, बाबा तो कहता था अगली दिवाली भी नहीं आने वाली, ये तो शुरू से है यज्ञ, जब से शुरू हुआ तब से कहते हैं ना अगली दिवाली भी नहीं आएगी, तो अब उनके लिए तो टाइम बहुत कम है। तो दादी कहती थी बाबा मैं लेट आई हूँ, जैसे आप में से भी कई कहते होंगे बाबा हम तो बहुत लेट आए हैं, तो दादी ने बाबा को कहा बाबा मैं तो लेट आई हूँ, तो अब मुझे नंबर वन में जाना है, तो मैं क्या पुरुषार्थ करूं। तो बाबा ने कहा कि आप है ना 6 बार रोज मुरली पढ़ो, तो दादी ने कहा कि मैं 6 बार नहीं बाबा 12 बार पढ़ूंगी, और दादी कहती सचमुच मैंने 12 बार मुरली पढ़ी, फिर भले सारे दिन यज्ञ सेवा होती थी, अगर मैं नहीं भी पढ़ पाती थी तो भी मैं रात को जाग करके भी मुरली पढ़ती थी। तो देखो गैलप किया ना, मुरली पढ़ा इतना। तो जब इतनी बार मुरली पढ़ेंगे तो मुरली की एक एक बात हमें याद होगी ना, और जो बात हमारी स्मृति में है वही हमारी स्थिति में आएगी, वही हमारे व्यवहार में आएगी। अगर मुझे स्मृति ही नहीं है बाबा ने क्या कहा, आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा, कौन सी पॉइंट पर विशेष अटेंशन था आज, कर्मातीत। एक अच्छी धारणा की बात थी मुरली में, प्यार का सागर है तो क्या करना चाहिए, अगर प्यार का सागर है हाँ तो आज बाबा ने कहा कि कुछ भी हो प्यार से समझा सकते हैं, अगर कोई कितनी भी गलती करे तो क्या हुआ बाबा ने कहा, फिर भी प्यार से समझाया जा सकता है। तो जब भगवान प्यार का सागर है तो फिर हम क्यों गुस्सा करेंगे ना? तो अगर सारा दिन मुझे ये याद है तो हम अटेंशन रखेंगे ना उसका, तभी वो हम व्यवहार में ला पाएंगे। और भूल गए तो मेरे पुराने संस्कार कब इमर्ज हो जाएंगे मुझे ही पता नहीं, फिर हम गुस्सा करने के बाद सोचेंगे कि अरे गुस्सा तो नहीं करना था, मैंने तो गुस्सा कर लिया है ना। एक मिसाल आता है, जैसे मुरली के लिए हम कहेंगे कि थ्योरी हम सुनते हैं, एक तो ज्ञान हम सुनते हैं और दूसरा हम उससे प्रैक्टिकल करते हैं। तो जो भी बाबा ने हमें बातें कही हैं प्रैक्टिकल में करने के लिए, तो जैसे युधिष्ठिर का एक मिसाल आता है कि जब गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को शिक्षा दे रहे थे, मैंने अभी शिक्षा देना शुरू किया था, छोटे छोटे बच्चे थे वो, तो उन्होंने उनको पहला पाठ पढ़ाया क्रोध मत कर और कहा कल ये पाठ याद करके आना, बहुत आसान था। दूसरे दिन सभी बच्चों ने फटाफट सुना दिया क्रोध मत कर, लेकिन युधिष्ठिर ने नहीं सुनाया, कहा गुरुजी मुझे याद नहीं हुआ। तो गुरु ने कहा युधिष्ठिर इतना सरल पाठ तुमको याद नहीं हुआ, कोई बात नहीं कल याद करके आ जाना। अब दूसरे दिन जब वो आया तब गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा युधिष्ठिर जो तुमको कहा था पाठ याद हो गया, तो कहा गुरुजी नहीं याद हुआ, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि कल मुझे दुर्योधन ने कुछ ऐसा बोला था तो मुझे गुस्सा आ गया, तो इसका मतलब मुझे पाठ याद नहीं हुआ, क्योंकि वो उसे प्रैक्टिकल लाने के लिए सोच रहा था। तो अब गुरु ने थोड़ा सा उसे गुस्से से बोला इतना सरल पाठ तुम्हें याद नहीं होता, कल जरूर याद करके आना, अगर नहीं याद करके आया तो तुमको क्लास में नहीं आने देंगे। अब तीसरे दिन जब युधिष्ठिर आया और फिर गुरु ने पूछा पाठ याद हुआ, कहा गुरुजी अभी तक याद नहीं हुआ। तो गुरु ने एक थप्पड़ उठाया लगाने के लिए, लेकिन वो लगाते उसके पहले ही उसने बोला गुरुजी याद हो गया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा जब सजा खाने की बात आई तब तुम्हें पाठ याद हुआ। तो बोला नहीं गुरुजी मैं अपने आप को देख रहा था, क्योंकि मैंने देखा कि मुझे अभी पिछले दो दिनों में भी गुस्सा आ रहा था किन्हीं किन्हीं बातों पर, और अभी जब आपने मुझ पर गुस्सा किया और मेरे पर हाथ भी उठाने लगे तो भी मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, तो अब मुझे लग रहा है कि मुझे याद हो गया, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि मुझे पाठ अब याद हो गया। तो सचमुच क्रोध नहीं करना है, ये केवल सुन लेना, और सचमुच जीवन में क्रोध ना आए ऐसा जीवन बन जाए उसमें तो अंतर है। तो बाबा कई बार हमको ये होमवर्क दे चुके हैं। मुझे याद है ओम शांति भवन में मुरली चली थी एक बार बाबा की, तो बाबा ने ऐसे कहा था शिवरात्रि का समय था कि बाबा के ऊपर ये क्रोध के अक का फूल चढ़ा दो, और बाबा 6 महीने का टाइम देता है आपको, 6 महीने के अंदर क्रोध मुक्त हो जाना है आपको, जो ये कहेगा कि मैं क्रोध मुक्त हो गया पूरा उसको बाबा प्राइज भी देंगे। और सचमुच बाबा ने 6 महीने के बाद फिर उठाया भी था, बाबा को याद भी रहा और बाबा ने उठाया भी था कि कौन कौन बच्चे जो है वो पूरा क्रोध मुक्त रहे। तो आपसे पूछते हैं कि जो हम सभा में बैठे हैं कौन समझते हैं कि हमने पूरी तरह से अपने गुस्से को जीता है, उसके मोटा रूप तो जीत लेते हैं लेकिन सूक्ष्म रूप में भी जो मन ही मन हम कई बार अपनी नेगेटिव फीलिंग से गुस्सा करते हैं, जिसको कहते हैं ना आंखों से व्यवहार से, मना मुख से नहीं बोलते हैं लेकिन चेहरे से दिखाते हैं वो नाराजगी कि हमें पसंद नहीं है, कौन समझते हैं हमने जीता गुस्से को। अच्छा, एक ही जना हाथ उठा रहा है, एक दो, अच्छा, तो जो भी दो तीन ने हाथ उठाया वो तो वास्तव में जो हमारे साथ रहते हैं ना वो हमारी सही रिपोर्ट दे सकते हैं, पर फिर भी दो तीन तो है इस सभा में, उनके लिए आप ताली बजाइए। हाँ, इतना। लेकिन हम सभी को क्रोध मुक्त बनना है, तो जैसे बाबा ने आज हमें मुरली में शिक्षा बताई, उस शिक्षा का यदि हम स्वरूप बनेंगे, अगर एक एक दिन भी हमने उस विकार को जीत लिया तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाता है कि हम इस पर विजयी बन सकते हैं। जब एक दिन हमने क्रोध नहीं किया तो दूसरे दिन भी हम, हो सकता है ऐसा कि हम ना करें, और ऐसे एक एक करते करते फिर अल्टीमेटली हम उस पर जीत पा लेते हैं। तो बाबा के साथ हमारा ये शिक्षक का संबंध और फिर गुरु का संबंध भी है हमारा। गुरु से लोग आशीर्वाद की कामना करते हैं, दुनिया में लोग गुरु करते हैं तो कहते हैं गुरु सिर पर हाथ रख दे, गुरु आशीर्वाद कर दे, तो हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। अपने जीवन को सहज बनाने के लिए आशीर्वाद चाहते हैं। कई बार हम देखते हैं जब मधुबन में भी लोग मिलने के लिए आते हैं ना, तो दादियां अगर बैठी हैं तो दादी से बोलेंगे, दादी जी मेरे सिर पर हाथ रख दीजिए, आपका वरदान चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो बाबा कहता है ऐसे आशीर्वाद मिलता है? बाबा हमारा सद्गुरु है, बाबा हमें कैसे आशीर्वाद वरदान देता है, ऐसे मिलता है आशीर्वाद? लेकिन बाबा की श्रीमत पर चलना ही बाबा की आशीर्वाद के पात्र बनना है। तो बाबा कहते हैं जैसे गुरु लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं, या सदा सुखी रहो ये आशीर्वाद देते हैं, किसी को बेटा नहीं है तो वो बेटा पाने के लिए गुरु के पास जाएंगे तो कहेंगे पुत्रवान भव या धनवान भव, कोई गरीब है तो धन का आशीर्वाद चाहते हैं तो धनवान भव ये आशीर्वाद देते हैं। तो आप बच्चों को ये आशीर्वाद मिले हुए हैं। अब लंबी आयु कौन सी आयु, ये शरीर की आयु की बात नहीं, बाबा कहता है ब्राह्मण जीवन में आप सदा जीते रहो, ये ब्राह्मण जन्म की आयु लंबी हो जितना भी समय हो आप। नहीं तो कई बच्चों का क्या होता है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती और फिर सुनावंती और थगंती, तो ये छोटी आयु कहेंगे अगर ऐसा होता है तो। लेकिन लंबी आयु के साथ साथ निरोगी होना भी जरूरी है, कोई रोग भी ना हो, तो माया के रोग भी ना लगे रहें, माया के इन रोगों से भी हम बचे रहें, ये बाबा हमें वरदान देते हैं। फिर पुत्रवान भव, तो बाबा कहते हैं आप बच्चों को मैं बेहद का मास्टर रचयिता बना देता हूँ, एक दो बच्चों की बात नहीं, वो माँ बाप तो दो तीन बच्चों के रचयिता होंगे, लेकिन आप जिन आत्माओं को बाबा का बनाते हो वो कितना बड़ा परिवार है। जिन आत्माओं के प्रति आप शुभ भावना शुभकामना रखते हो, जिन आत्माओं के प्रति आप पूर्वज हो, वो विश्व की सर्व आत्माएं हैं। तो जैसे बाबा रचयिता है ऐसे हम बाबा के सब बच्चे मास्टर बेहद के रचयिता हैं। जैसे बाबा जिम्मेवार है ऐसे हम बच्चे भी बाबा के साथ साथ विश्व परिवर्तन के लिए आत्माओं के कल्याण के लिए जिम्मेवार हैं। धनवान भव यानी ज्ञान धन से बाबा हमें धनवान बना देता है, और ये ज्ञान धन हमारी कमाई है, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, तो ये सिर्फ इस समय ही नहीं लेकिन 21 जन्मों तक हमारे साथ चलती है और हमें पद्मा पदम पति बना देती है। बाबा कहता है आप बच्चे कदमों में पद्मों की कमाई जमा करने वाले हो, जो आज के बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी वो कमाई नहीं कर सकते। बाबा की श्रीमत प्रमाण जो कदम उठाया उस हर कदम में पद्मों की कमाई हमारी जमा होती है। फिर गुरु हमें मंत्र देते हैं, दुनिया में जो गुरु होते हैं वो कोई मंत्र देते हैं, नाम देते हैं, फिर वो कहते हैं अपना ये मंत्र किसी को नहीं कहना। आप में से भी कईयों ने गुरु किए होंगे, किए हैं किसी ने गुरु, यहाँ आने के पहले बाबा के पास आने से पहले लंबा हाथ उठाएं जिन्होंने गुरु किए, देखो माताओं ने सबसे ज्यादा किए। तो गुरु ने आपको मंत्र दिया है ना, मंत्र दिया, और एक माता जी हमसे मिली और उन्होंने कहा कि हमारे जो गुरु हैं उन्होंने मंत्र दिया, हमने उनसे नाम लिया हुआ है। अब बाबा का ज्ञान सुनते हैं तो बाबा का ज्ञान अच्छा लगता है और महसूस भी होता है कि अब हमें गुरुओं का गुरु मिल गया, सदगुरु मिल गया। लेकिन हमें डर लगता है कि अगर हमने जो गुरु किया हुआ है उसे छोड़ दिया तो कहीं हमें श्राप तो नहीं मिल जाएगा, क्या कहेंगे? हाँ, तो एक बार एक माता थी, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया हमें कि वो अव्यक्त बाप दादा से मिलने के लिए आए थे, पहली बार अव्यक्त बाप दादा से मिलने के लिए आए और उन्हें पूरा निश्चय भी नहीं था, गुरु किया हुआ था और पूरा निश्चय भी नहीं था अभी बाबा के ऊपर, उनकी माता जी ज्ञान में चलती थी, वो लेकर के आई उन्हें। तो जब अव्यक्त बाबा आए तो बाबा को देखते ही उसे, उस समय लोग बाबा को भाकी पहनकर मिलते थे, माना अव्यक्त बाबा गुलजार दादी के तन में ही बाबा आते थे, तो जैसे दादियों को हम देखते हैं ना, बाबा मिलते हैं बिल्कुल नजदीक से, तो ऐसे ही कई भाई बहने भी उस समय बाबा से मिलते थे। तो वो बिल्कुल सामने ही बैठी थी ऐसे, और पहले तो वो ही देख रही थी कि इनके बाबा, क्योंकि बाबा बोलते ना बाबा आएंगे, तो उसको पहले तो यही नहीं पता था कि जो दादी जी बैठी हैं वही, उसी में बाबा आएंगे। तो वो समझ रही थी कि तो दादी जी बैठी हैं, बाबा कब आएंगे। फिर जब बाबा आ गए, जब शिव बाबा का अवतरण हो गया उनके तन में, तो कहती है मैं भूल ही गई बिल्कुल कि दादी कौन और बाबा कौन, और बस वो दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी बाबा की और मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं बिल्कुल बाबा को जाके गले लग गई और बस मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो सब कुछ मिल गया। और फिर उस समय बाबा से बातें भी कर लेते थे, मतलब भाई बहने जो हैं, परमिशन थी उस समय बाबा 1-to-1 एक एक से मिलते थे। तो जब उसको मौका मिला तो उसने बाबा से ये बात पूछ ली कि बाबा मैंने गुरु किया हुआ है और मेरा गुरु कहता है कि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो तुमको कैंसर हो जाएगा, तो क्या मुझे कैंसर हो जाएगा? क्योंकि मैं छोड़ना तो चाहती हूँ पर मैं बहुत डरती हूँ। तो बाबा ने कहा कि बच्ची अगर तुम सोचोगी तो होगा, नहीं सोचोगी तो कुछ नहीं होगा। और फिर वो तो छूटा, गुरु तो छूटा छूट ही जाता है जब बाबा का अनुभव हो गया तो। और आज तक भी, आज उनकी 75 साल की उम्र है, आज तक वो स्वस्थ हैं और यहीं रहते हैं माउंट आबू में। तो मैं एक बात कह रही हूँ कि कई बार गुरुओं से इतना डरते हैं, प्रेम से नहीं लेकिन भय से उनका नाम स्मरण करते हैं। लेकिन बाबा ने हमें जो मंत्र दिया है, बाबा कहता है आप पूरी दुनिया को वो मंत्र सुनाओ, कोई उसको अपने तक रखने की जरूरत नहीं है, सब तक बाबा का संदेश पहुंचना चाहिए। और बाबा के जो दिए हुए वरदान हमें मिलते हैं रोज, वरदानों से बाबा हमारी झोली भरते हैं। बाबा कहते हैं जितना आप स्मृति स्वरूप बनेंगे उन वरदानों के, उतना ही वो वरदान आपके वृद्धि को पाते जाएंगे, उतना ही आप फील करेंगे कि बाबा के वरदानों से ही हम पल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। विधि है उसको स्मृति में लाने की, कि हमें उसे अटेंशन का धूप और स्मृति का पानी देते रहना है। तो जितना हम उसे वो स्मृति का पानी देते रहेंगे, हर दिन अमृत वेले हम एक बार जरूर याद कर लें, जो भी आज जैसे सोमान है वो हमारे लिए वरदान के रूप में ही है, तो मेरा आज का सोमान, जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो अगर मैंने वो अमृत वेले अपने लिए संकल्प लिया और सारे दिन मैं इस अनुभव में रहूंगी, तो फिर दिन में कई बार या हर घंटे में कम से कम एक बार उस अनुभूति के साथ हम उसे स्मृति में ले आए, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो आप महसूस करेंगे सारा दिन कोई भी परिस्थिति आपके सामने आएगी वो सर्व शक्तियां आपकी मर्ज रूप में रहेंगी और आपको सहज लगेगा कि कैसे सहज हमने उस अपनी स्थिति से इसको पार कर लिया। ऐसे ही बाबा हमारे लिए साजन भी हैं। दुनिया में ये जो संबंध होता है, ये संबंध सबसे अधिक समीप संबंध माना जाता है और इस संबंध में वफादारी चाहिए, इस संबंध की विशेषता क्या है? वफादारी चाहिए। माना अगर पति को ये पता चलता है कि पत्नी का किसी और के साथ संबंध है तो उसे पसंद नहीं आएगा, या पत्नी को ये पता चलेगा कि पति का किसी और के साथ संबंध है तो उसे भी वो पसंद नहीं आएगा, और अगर ये चलता रहे तो फिर संबंध में दरार आने लगती है और कई बार संबंध टूट भी जाते हैं। इसी की वजह से कई बार तलाक हो जाते हैं कि जो आपस की जो समझ है कि क्योंकि उसका किसी और के साथ थोड़ा लगाव झुकाव है तो उस संबंध में फर्क पड़ जाता है। तो यहाँ भी बाबा को भी पसंद नहीं है, बाबा को भी इस संबंध में तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर हाँ, तुम्ही से दिल का हाल सुनाऊं, तुम्ही संग चलूं, तुम्ही संग पूरा जो भी हमारी दिनचर्या है वो बाबा के साथ ही रहे। बाबा मेरा साथी है, मेरी कंपनी और कंपेनियन बाबा है, ये अनुभूति इस संबंध में माना हम कहेंगे एक बाप दूसरा ना कोई, ये सच्ची अनुभूति जो है वो इस संबंध के माध्यम से हम बाबा के द्वारा कर सकते हैं। तो भाई कहेंगे बहनों के लिए तो बाबा साजन है, लेकिन भाइयों के लिए भी साजन हो सकता है क्या? क्योंकि वो राम है और आत्माएं सभी सीताएं हैं, तो आत्मा के संबंध में तो सभी का साजन एक बाबा है। या आशिक माशुक भी हम कहेंगे तो उस रूप में भी वो संबंध हम बाबा से अनुभव कर सकते हैं, जो मुरली में कई बार बाबा कहते हैं कि सभी आशिकों का माशुक एक बाबा है, तो हम सब उस आशिक के माशुक हैं। तो ये संबंध भी बहुत प्यारा होता है और इस संबंध में लोग क्या करते हैं, आपस में एक साथ मिलकर के घूमने जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, आज की दुनिया में उसे डेटिंग कहते हैं, कि कहीं समुद्र के किनारे चले जाओ बीच पर, या कहीं किसी सुंदर गार्डन में चले जाओ मिलने के लिए, या किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए चले जाओ। तो बाबा के साथ भी हम ऐसे वैरायटी अनुभव कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से उस संबंध का अनुभव बाबा के साथ करते हैं। तो हम यहाँ आते हैं, बाबा कहता है ये ज्ञान सागर का किनारा है, ज्ञान सागर का कंठा है, तो वहां जब हम योग करते हैं तो हम अनुभव करें बाबा के साथ, हम यहाँ मधुबन में आए हैं, मधुबन में मिलन मना रहे हैं, या व्यक्त बाबा के साथ जब हमारे मिलन के अनुभव होते हैं, हम सबके अपने अपने विशेष अनुभव जो बाबा के साथ हमने मिलन के अनुभव किए हुए होते हैं, उन अनुभवों को हम याद करें, तो वो जो प्रेम हमें बाबा से मिला हुआ है वो विभिन्न रूप से हम उसको इमर्ज करके इस संबंध से बाबा को याद कर सकते हैं। फिर बाबा हमारा दोस्त भी है, खुदा दोस्त की कहानियां तो हम सुनते ही हैं। दोस्त से हम दिल की बातें सहज कर सकते हैं, जो माँ बाप से भी नहीं कर सकते वो हम दोस्तों से करते हैं, और बाबा से तो हम वो सब बातें जो हम किसी से भी नहीं कर सकते, जो दोस्त से भी नहीं की जा सकती, कई बातें इतनी पर्सनल होती हैं कि वो किसी दोस्त से भी नहीं की जा सकती, वो हम बाबा से कर सकते हैं। तो बाबा से जब हमें लगता है कि बाबा कहता है सच सच सुना दो, अगर कोई ऐसी बात हमारे जीवन में है, कोई ऐसी कमी है, या कोई गलती हमसे हो गई, या कोई भी ऐसी हमारी आवश्यकता है, बाबा हमारी आवश्यकताएं भी पूरी करते हैं, ये भी हम महसूस करते हैं कि कोई हमारी आवश्यकता का संकल्प हमारे मन में आता है, वो संकल्प हम पूरा करें उसके पहले ही हमारी वो आवश्यकताएं बाबा पूरी कर रहे होते हैं, और हमें आश्चर्य हो जाता है। मधुबन में आने के बाद तो बहुत ऐसा फील करते हैं लोग, और कई बार ऐसा लगता है कि ये चमत्कार कैसे हो जाता है, हाँ कि हम उसको याद कर रहे हैं वो हमें मिल जाए और पता चलता है सामने से वही आ रहा है, या कोई दादी से मिलना चाहते हैं, या कोई वरिष्ठ हमारे उनसे मिलना चाहते हैं, पर लगता है मिलना बहुत मुश्किल है, मतलब हमें उस समय ऐसे महसूस होता है, लेकिन सहज बाबा कैसे अचानक मिलवा देता है पता भी नहीं चलता है। तो इस तरह से दोस्त के रूप में हर कर्म में हम उसे अपना साथी बना करके रखें, तो जितना कर्म योगी बन करके हम कर्म करेंगे, बाबा के साथ रह करके हम कर्म करेंगे, कर्म में भी वो शक्ति भरेगी और करण करावन हार वो कर्म करा रहा है हमसे, तो फिर हम जो 2 घंटे का काम है वो हमसे 1 घंटे में हो जाएगा, ये फर्क पड़ जाता है। फिर बाबा के साथ वो हमारा बचा भी है, तो खासकर सभी प्रवृत्ति वाले हैं तो जैसे घर में 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, साथ साथ में बाबा भी हमारा बच्चा है। तो बाबा कहता है मैंने आप बच्चों को वारिस बनाया है, लेकिन अगर आप भी मुझे वारिस बनाते हैं तो फिर मैं 21 जन्मों तक आपको वारिस बना देता हूँ। तो फिर जो हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं उतना ही हमें बाबा के लिए भी करना है। 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों के लिए पूरा हम ध्यान रखते हैं ना, उनकी हर चीज का माँ बाप ध्यान रखते हैं, क्या उनके उनका भोजन होना चाहिए, क्या उनकी एजुकेशन होनी चाहिए, जो कितना खर्चा हम उनके लिए करते हैं, तो उतना ही फिर बाबा भी मेरा बच्चा है, उतना हिस्सा बाबा का भी हम निकालें। बच्चों को खिलाते हैं, बाबा भी मेरा बच्चा है उसको भी मुझे खिलाना है। रोज भोग लगा करके, भोग लगाया माना तभी बाबा को खिलाया, अगर भोग लगाना भूल गए इसका मतलब हमने उस बच्चे को अभी खिलाया नहीं। तो उस रूप में हम बच्चे के रूप में उसे याद रखते हैं। और ऐसे ही बाबा हमारा धर्मराज है, माना ये वो न्यायकारी है, लेकिन वो संबंध अंत में आत्मा अनुभव करती है, जब सारे हिसाब किताब आत्मा को चुकतू करके घर वापस लौटना होता है। अभी संगम युग पर तो बाबा हमारे साथ बाप, शिक्षक और सदगुरु, ये 3 मुख्य संबंधों में हमारे साथ संबंध निभा रहे हैं। तो जब हम सर्व संबंधों का अनुभव बाबा के साथ हर दिन करते रहते हैं, तब हम सहज योगी जीवन का, निरंतर योगी जीवन का अनुभव करते हैं। और अगर हम एक भी संबंध की कमी अनुभव करते हैं, मानो मुझे पिता का संबंध ही पसंद है तो मैं हमेशा पिता के संबंध से ही बाबा को याद करती हूँ, लेकिन मुझे दोस्त भी पसंद है, फिर कई बार हम ये भी सोचते हैं बाबा तो निराकार है, साकार में भी तो कोई चाहिए ना जो मेरे दिल की बात सुने। बाबा को हम दिल की बात सुना देते हैं लेकिन रिस्पॉन्स कहाँ मिलता है, तो कोई तो साथी हो जिससे दिल की बात की जा सके, जिसे हम कहते हैं कंपेनियन, कोई तो एक चाहिए, कोई एक सखी, कोई एक दोस्त, वो तो होना चाहिए। तो बाबा कहता है जब बाबा ने भक्तों को भी अनुभव कराया है, जो ऐसे अनन्य भक्त हुए हैं भगवान के, जिन्होंने हर स्थिति में सिर्फ भगवान को ही याद किया, भगवान उनके लिए भी हाजिर हो गए। मीराबाई उसको जहर का प्याला दे दिया तो वो जहर भी क्या बन गया, अमृत बन गया। ऐसे ही बताते हैं नरसिंह मेहता, एक गुजरात में भगत थे, बहुत गरीब थे, उनकी बेटी की शादी थी, उसकी हुंडी भरनी थी, उसने भगवान के ऊपर छोड़ा तो भगवान ने उसकी, आप किसी को भी निमित्त बनाया, भगवान अपना कार्य तो करा ही देता है, तो उसकी हुंडी भी वो भर गई। ऐसे कितने भक्तों के अनुभव हैं जो इनडायरेक्ट संबंध भगवान से, जो जानते भी नहीं है, उनके भी कार्य बाबा ने कर दिए, क्योंकि भक्तों को भी भावना का फल तो देने वाला बाबा ही है। तो अगर हम डायरेक्ट बाबा को याद कर रहे हैं, डायरेक्ट उसके संबंध में है, तो अगर एक बल एक भरोसा है, अगर किसी आत्मा को हमने सहारा बना रखा है, थोड़ा बाबा और थोड़ा ये, ऐसे होता है ना, थोड़ा थोड़ा, ये भी चाहिए ये भी चाहिए, और अगर ऐसे हमने कर रखा है तो बाबा किनारे हो जाता है। बाबा ने देख लिया कि आपने आत्मा को अपना आधार बना रखा है तो ठीक है, ये आत्मा ही करेगी आपके लिए, और उस आत्मा की कितनी शक्ति है उतना ही आपका होगा। लेकिन अगर हमने सिर्फ बाबा को आधार बनाया तो असंभव बातें भी संभव हो जाती है। जो हमने अपना अनुभव सुनाया, ऐसे आप में से भी कईयों का अनुभव होगा कि जब वो एक भरोसा हम रखते हैं बाबा के ऊपर पूरा, तब वो हम अनुभव करते हैं। तो बाबा निराकार है ऐसा हमें सोचने की जरूरत नहीं है, बाबा तो सूक्ष्म रूप में कभी भी किसी भी समय जहां हम चाहें जैसे हम चाहें, इंसान नहीं पहुंच सकता है, इंसान की फिर भी लिमिट है। हाँ, जिसको आप सोचते हो ये आपका साथी है, हमेशा का साथी है, जब आपको जरूरत होगी वो ही नहीं होगा आपके पास। लेकिन बाबा पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता है ना। तो भगवान की वो शक्ति, वो सर्वशक्तिमान है, वो कभी भी कहीं भी हमारे लिए हाजिर हो सकता है। लेकिन वो संपूर्ण निश्चय, 100% निश्चय हम जिसे कहेंगे, वो 100% निश्चय हमारा बाबा के ऊपर चाहिए। तो जब हम बाबा के संबंधों में अनुभव करते हुए उसके लव में लीन रहते हैं, तो हम सहज ही मेहनत से मुक्त हो जाते हैं। बाबा कहते हैं जो मोहब्बत में रहते हैं उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। संबंधों में ही स्नेह होता है, संबंध से ही स्नेह का अनुभव होता है। ऐसे ही सुखी सुखी याद करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, शिव बाबा भी ज्योति बिंदु है, परम धाम में है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है। मानो थोड़े समय के बाद क्या होगा, अगर ऐसे याद करते हैं थोड़े समय के बाद क्या करने लगेंगे, इतनी शांति में चले जाएंगे कि झुटके मारने लगेंगे या वही निद्रा योग में चले जाएंगे। तो अगर हम ऐसा योग करते हैं तो हम लगन में मगन स्थिति का अनुभव नहीं करते। और वो जो ज्वालामुखी योग होना चाहिए, जो लवलीन स्थिति बाबा कहता है, वो अनुभव नहीं होती है। लेकिन जब बाबा के स्नेह में समा जाते हैं, बाबा कहते हैं तीन प्रकार के स्नेही हैं, एक है स्नेह करने वाले, एक है स्नेह निभाने वाले, और एक है स्नेह में समाने वाले। तो ज्यादातर स्नेह करने वाले हैं, समय अनुसार कोई अवसर हुआ उस समय वो संबंध याद आ गया। अब जैसे रक्षाबंधन आया तो भाई का संबंध होता है, तो बाबा को भी भाई के संबंध से उस दिन हमने याद कर लिया, बाबा से राखी बंधवा ली, बाबा को राखी बांध दी, तो समय अनुसार कर लिया, बस हो गया। और जैसे कहा कि अगर कोई संबंध की कमी है तो वो आत्मा मुझे उस संबंध से खींच सकती है, तो ऐसे ही मानो किसको भाई नहीं होता है तो राखी के दिन क्या करते हैं, उनको वो भाई बहुत याद आता है, या किसी को बहन नहीं है तो बहन बहुत याद आती है, तो फिर किसी को भाई बनाने की कोशिश करते हैं कि ये मेरा भाई हो जाए, ये मेरी बहन हो जाए, ये प्रयास करते हैं। या किसी को माँ नहीं है, किसी को पिता नहीं है, किसी को दोस्त नहीं है, तो वो कमी फील करते हैं कि मेरे जीवन में ये संबंध की कमी है। जो संबंध की कमी है, हर एक के जीवन में कोई ना कोई एक संबंध तो ऐसा होता है जिसकी उसके जीवन में कमी होती है। सबको सब संबंध हो वो बहुत कम होते हैं। तो अगर कमी है तो वही संबंध अधिक हम बाबा से अनुभव करें, और हम देखेंगे मनुष्य से भी ज्यादा बाबा हमें उस संबंध का अनुभव कराता है, वो शक्ति हमें उससे मिलती है, वो समीपता बाबा से हमें महसूस होती है। और नहीं तो वो आत्मा आपकी बुद्धि को खींचेगी, उस संबंध में वो बुद्धि जाएगी हमारी। तो एक संबंध बाबा से हमारा कम हो गया, तो अगर सर्व संबंधों का अनुभव नहीं है तो फिर सर्व प्राप्तियां भी नहीं होंगी। और जब बाबा से सर्व संबंध है तो हम नष्टो मोहा भी सहज बन जाते हैं। उतरा धोतरा भी हो सकता है, बाबा की नहीं हो सकता है। बाबा कहता है माताओं का सबसे ज्यादा मोह किसमें होता है, बेटे में नहीं होगा, लेकिन छोटे छोटे उनके जो नन्हे मुन्ने होते हैं उनमें ज्यादा मोह जाता है। लेकिन वो भी संबंध किससे अनुभव कर सकते हैं, कृष्ण जैसा बच्चा, जैसे कहा ना यशोदा मैया के लिए कहते हैं, तो अपने को वैसा फील करो और बाबा को उस रूप में भी हम अनुभव करें। जिस संबंध में बुद्धि ज्यादा जाती है वो सब संबंध हमें बाबा से अनुभव करते हैं, तो हम महसूस करेंगे कि हम सर्व प्राप्ति संपन्न हैं, और जो पाना था वो पा लिया। तो ये था, जब भी हम योग करें तो कोई ना कोई विशेष संबंध का अनुभव लेकर के हम बाबा को याद करें, और सारे दिन में भी जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है उस संबंध से हम बाबा के साथ हम साथी बन करके रहें, तो लगेगा कि सदा ही बाबा हमारे साथ हैं और बाबा की सर्व प्राप्तियां भी हमारे साथ हैं। ओम शांति। अपने को देह और देह के संबंधों से न्यारा करके ले चलें बाबा के पास। अव्यक्त वतन में और देखें बाप दादा बाहें पसारे मुझ आत्मा का आह्वान कर रहे हैं। बाबा के नैनों से मुझ आत्मा के प्रति असीम स्नेह छलक रहा है। मैं भी बाबा के स्नेह में समाती जा रही हूँ। बाबा के मस्तक से शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। आपने मुझे अपना बनाकर मुझे ईश्वरीय प्यार देकर मेरे जीवन को परिवर्तन कर दिया है। आप ही मेरे सच्चे माता पिता हो। मैं भाग्यवान हूँ, पद्मा पदम भाग्यवान हूँ, स्वयं भाग्य विधाता भगवान ने मुझे भाग्य बनाने की कलम अपने हाथ में दी है। आप मेरे जन्म जन्मांतर के भाग्य की रेखा खींच रहे हैं। आपकी पालना पाकर मैं आत्मा समर्थ और शक्तिशाली बन रही हूँ। आपने मुझे सर्व खजानों का मालिक बनाया है। आपने ही मुझे तीनों कालों का ज्ञान देकर श्रेष्ठ स्मृतियां दिलाई हैं। मैं आत्मा, शुद्ध और पवित्र आत्मा थी, दिवात्मा थी, श्रेष्ठ आत्मा, और अब पुनः मैं अपने खोए हुए उस स्वराज्य को आपके द्वारा प्राप्त कर रही हूँ। बाबा आप ही मेरे साथी हैं, मेरे हर कर्म में मेरे साथ करण करावन हार बनकर कर्म कराने वाले हैं। शिव बाबा प्यार के सागर हैं, मैं आत्मा, अपने पिता का वो ईश्वरीय रूहानी प्यार अनुभव कर रही हूँ। शिव बाबा की याद मुझे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराने वाली है। मेरा दिल बाबा आपको पाकर सदा ये गाता है, पाना था सो पा लिया, एक आप में ही सर्वव्यक्त शक्ति और वैभव समाये हैं। आपके श्रीमत के वरदानों का हाथ सदा मेरे सिर पर है। मैं सदा ही आपकी आज्ञाकारी बनकर श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ कर्म करती रहूंगी। बाबा सदा सर्व संबंधों से मेरे साथी हैं। अभी तक देहधारियों से संबंध में दुख और धोखा अनुभव किया। आपने मुझ आत्मा को सदा के लिए इस दुख से छुड़ा दिया है। और मुझे अपने समान सुखदाता बनाया है। कल्याणकारी बनाया है।
खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है, भगवान हमारा साथी है।
भगवान हमारा साथ।